कराते क्लास चल रहा था, पंद्रह आठ तिरसठ, तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि आत्माओं का बाप भी आत्माओं के मिसल छोटा है। और स्टार ही है, ये शिवलिंग भी इतना बड़ा दिखलाने के लिए बनाया है, है तो वो भी छोटा, भी क्यों लगा दिया? आत्माओं का बाप भी स्टार अनुसार है, आत्मा भी स्टार है और शिवलिंग भी इतना बड़ा दिखाने के लिए बनाए दिया है, है वो भी छोटा, जैसी आत्मा है कितने के साथ कंट्रास्ट किया, आत्मा आत्मा का बाप परमपिता और परमपिता जिसमें प्रवेश करता है जिसको बोला शिवलिंग, वो भी स्टार मिसल है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो पता थोड़ा ही पड़ता है, इसमें भी शिव बाबा आता है, पता तब पड़ता है जब नॉलेज देते हैं, तो ज्ञान सागर नॉलेज फुल वो है। वो भी है परमपिता परमात्मा, ऐसी नहीं कि वो आत्माओं से कोई बड़ा है, नहीं, बहुत छोटा सितारे अनुसार है। हम चित्र भी इतना बनाते हैं, तो समझते हैं इतना बड़ा लिंग फिर अंदर कैसे घुसता होगा, परंतु वो तो बिंदी मिसल है। जिसमें प्रवेश करता है वो भी बिंदी, तो जाने अनजाने में समझते हैं, कि बाबा की प्रवेशता है, पहले बच्चों को महसूसता होती थी, कि सन्नाटा हो गया है, बाबा आया हुआ है, तो जो आदमी हुआ तो फिर अंत में भी ऐसे ही होगा। क्या जब बाप आवेंगे तो सन्नाटा हो जाएगा। वो बाबा ही ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान दूसरा कोई कभी दे ही नहीं सकता। वो पानी का सागर भी कितना बड़ा होता है, ये फिर है छोटी सी। छोटी चीज है ना, पानी का सागर कितना बड़ा और ज्ञान का सागर कितना छोटा। स्टार उनका साक्षात्कार होता है, बाकी कोई बड़ी लाइट आदि नहीं है। उनको कहते ही हैं परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाली आत्मा। तो विचार करो कितनी आत्मा होगी। है वो ज्ञान का सागर, तो ज्ञान से ही पता पड़ता है। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप की और कोई दे ही नहीं सकता। वो ही बीज रूप है, वो ही सत्य है, चैतन्य है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है ना, ज्ञान का सागर है। ऐसा ज्ञान का सागर है जो सारा समंदर स्याही बनाओ और सारी दुनिया के झाड़ की कलम बनाओ तो भी पूरा न हो। शास्त्र तो बहुत लिमिटेड हैं और यहां तो शास्त्रों की बात ही नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान तो बाप आकर के सुनाते हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसे सुना ही नहीं सकता। वो गुरु लोग कुछ भी सुनावेंगे तो शास्त्रों को पढ़ करके याद करके सुनावेंगे। और ये तो कहते हैं कि मैं आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। तो जरूर वेदों शास्त्रों में भी सार है ना। आत्मा ये ज्ञान देती है आर्गंस द्वारा, परंतु मनुष्य तो इन बातों को समझते ही नहीं। न समझने के कारण फिर और गुरुओं के पास मंदिरों ठिकानों आदि में धक्के खाते रहते हैं। वो है ही उनका भक्ति मार्ग। भगवान के लिए धक्के खाते हैं। अभी भगवान तो है रचयिता, रचयिता बाप जरूर नहीं सृष्टि रचेगा। उस नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है। वह नई सृष्टि में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। और वो राज्य तो भारत में मशहूर है, जरूर उन लक्ष्मी नारायण को बाप से वर्षा मिला होगा। और कैसे मिला सो तो तुम बच्चे जानते हो, इसलिए बाबा कहते रहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए करके समझाओ। केनों को ये राज्य किसने दिया? बाप बैठ समझाते हैं कि राम राज्य में तो रावण राज्य होता ही नहीं, वहां रावण ही नहीं होता। और वास्तव में लक्ष्मी नारायण के राज्य को हम राम राज्य भी कैसे कह सकते? राम यदि शिव बाबा को कहें तो उनका तो राज्य होता ही नहीं है। तो देखो शास्त्रों ने कितने घोटाले कर दिए हैं। समझाने से भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है तो फिर टीचर भी क्या करे? टीचर तो आकर के सबको नॉलेज देते हैं। तो ये रावण निकालेंगे, तुम पूछ सकते हो पहला शत्रु कौन है और ये कब से हुआ? द्वापर से लेकर इन दोनों को मिलाना पड़े। दोनों ही फिर रावण का बुत बनाए जलाते हैं। पंद्रह 63 की वाणी का चौथा पीर अभी बैठ समझावेंगे तो वो लोग समझेंगे ये तो हमारी इंसल्ट करते हैं, परंतु इसमें इंसल्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान बैठ समझाते हैं और कोई नेशन में ऐसे बैठ नहीं करते हैं। दिखाते हैं, राम को चार भाई थे, दशरथ बाप था। अब हैं तो ये झूठी बातें, चार भाई तो वहां होते ही नहीं, कहां? त्रेता में तो कहां की बातें हैं? दशरथ कौन हुआ? शिव बाबा दशरथ। रथ माने शरीर, झार के चित्र में जो जड़ों पर बैठे हुए हैं 8 और 2 बीच में, तो टोटल कितने रथ हुए? 10 रथ हुए। ये 10 आत्माएं जब ज्ञान में आ जाती हैं तब राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है। तो पालना लेने वाला हुआ ना, वो पालना देने वाले बाप हुए। परंतु उन्होंने कोई एक व्यक्ति समझ लिया है दशरथ, शास्त्रों में तो काम के आधार पर नाम दिए हैं। एक रथ की बात नहीं है, एक रथवान की बात नहीं है, ये रथ शरीर को कहा जाता है। दस आत्माओं के दस शरीर हैं, जो दस धर्म के मुखिया होते हैं। बाकी चार भाई तो त्रेता में होते ही नहीं। तो अब तुम समझ गए हो कैसे रावण खुद ही अपना बुत बनाए फिर जलाते हैं। और रावण तो इस समय सभी का बाप है। कितने सभी है? जो भी 500-700 करोड़ हैं, इस समय सभी का बाप रावण है और सभी रावण के बच्चे हैं। अपने बाप रावण का बुत बनाए बैठ जलाते हैं। समझते हैं, रावण को जला देंगे फिर राम राज्य होगा। वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर राम राज्य होता है क्या? तो रावण को जलाने से कोई रामराज्य तो होता नहीं। समझते हैं, रावण हमारा दुश्मन है, परंतु है तो खुद रावण। हम भी कहते हैं कि हम भी अभी कुछ परसेंटेज में रावण हैं जरूर, पहला पहला दुश्मन है देह अभिमान। तो जब तक ये देह अभिमान गया नहीं है, दुश्मनों को जीत नहीं सकते हैं। पहले पहले तो सभी भूलना पड़ता है। अभी हमारा ऑलराउंड पार्ट पूरा हुआ, अब हमको जाना है। अभी ये नाटक पूरा हुआ तो अभी ये चोला छोड़ना है। इस बेहद के ड्रामा में हम एक्टर्स हैं। अभी हम जाते हैं बाबा के घर, क्योंकि ये तो दुखधाम है। बाप कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं, परंतु योग से विक्रमाजीत जरूर बनना है। विकर्मों को जीतेंगे नहीं तो बाप के घर में जाए भी नहीं सकते। छी छी आत्मा वहां आ नहीं सकती। मेरे साथ योग लगाते रहो तो तुम्हारी पतित आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, फिर तुम हमारे पास चले आवेंगे। साकारी दुनिया को भूल, निराकारी दुनिया, बाप का घर याद करना पड़ता है। सत्युग में तो जानते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अभी तो समझते हैं हम वापस बाबा के पास जाए फिर आकर के राज भाग लेंगे। ये याद रहे तो अतीन्द्रिय सुख का नशा चढ़ जाए, परंतु पिछाड़ी में तुम्हारी ऐसी अवस्था होती है उसमें भी उनकी अच्छी अवस्था होती है जो अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो अभी नाटक पूरा होता है, जल्दी जल्दी अपने धाम जाए फिर आवेंगे, ऐसी ऐसी बातें अपन से करनी होती हैं। रावण की बांडे से तो बाप ही आकर के छोड़ा सकते हैं, अगर हाथ छोड़ा बाप का तो रावण के रावण ही रह जाएंगे। फिर पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। फिर इसके लिए कहा जाता है तकदीर बनाने आए, फिर तकदीर को लकीर लगाकर चले गए। तुम खुद भी जानते हो कि जट माया नाक से पकड़ती है, बी के भी ऐसी हैं जो गुस्सा करती हैं, बी के याद का कारण नहीं निकाल सकते हैं। और गुस्सा तुम्हारी तकदीर पर है, बी के भी कुछ नहीं कर सकती। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर है, ये पुरुषार्थ करना थोड़े ही छोड़ देना है। अगर पुरुषार्थ छोड़ा तो ये मरा, पांच विकार खा करके पूरा कर लेते हैं। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां आकर के उसको ले जाती है, तो पांच विकार भी पूरा खा करके एकदम ले जाते हैं। ऐसों के लिए फिर वैकुंठ घर खलास हो जाता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो रूसते रहते हैं, ब्राह्मणे ने कुछ भी कहा और छोड़ दिया। उनकी जो आबादी होनी थी सो अपनी बर्बादी कर दी, माया अच्छी तरह से पकड़ लेती है। तो यहां से मरा तो खेल खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं इसको राहु की दशा बैठती है वो तो एकदम मर जाते हैं, तो किसको राहु की दशा किसको शनिचर की दशा। जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा होगी वो तो खूब सर्विस करता रहेगा, सर्विस भी करता रहेगा और विचार सागर मंथन भी करता रहेगा। मेहनत करेगा और दूसरों को भी कराता रहेगा। ऐसों को समझो कि अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है, अगर नहीं तो फिर अविनाशी राहु की दशा हो जाती है, फिर तो ऊंचे पद पाए नहीं सकेंगे। तो पुरुषार्थ करके बृहस्पति की दशा बिठानी चाहिए, बाप की सर्विस लेनी है और करनी चाहिए। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको बुद्धि बहुत दौड़ानी चाहिए और शिव बाबा से योग भी बहुत अच्छा चाहिए। और योग भी कब होगा? जब पूरा निश्चय होगा तो योग भी लगेगा, नहीं तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। अगर विकर्म हो गया तो योग टूट जाएगा। योग टूटता ही तब है जब विकर्म होते हैं, अथवा विकर्म होते हैं तब जब योग टूटता है। तो अरस परस है, बात एक ही है। बड़ी भारी मेहनत है, अब ये गीत चला है, हमने जाना हमने पाया शिव भोला भगवान। देखो ये अक्षर रंग है, उनको तो देखा जा ही नहीं सकता। नहीं तो फिर कहेंगे हम देखा नहीं है तो कैसे कहें कि हमने पाया है। अरे उनको तो बुद्धि से जाना जाता है। इनकी बात नहीं है, किनकी? जिनको देख के गीत बनाई लिया है कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। उन्होंने किसको शिव भोला भगवान समझ लिया? ब्रह्मा बाबा के रूप को शिव भोला भगवान समझ लिया। तो सैकड़ों फोटो बनाते रहते हैं। अरे ये तो नालिस से ही मालूम पड़ता है, देखने करने की बात नहीं है। ज्ञान का सागर है ना, उसमें नॉलेज है तो ब्लिस भी है। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट कमाई करने के लायक बन जाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर ब्लिस करते रहेंगे। अच्छा शिकील दे बच्चों को याद प्यार। एक अधूरी मुरली और है, 16-8-63 की। बच्चे जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि हरेक मनुष्य को अपना देश, जिसको जन्म स्थान अथवा बर्थ प्लेस कहते हैं, वो प्यारा होता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव खुद कहते हैं मुझे भी कौन सा खंड? भारत खंड, जिसको सच खंड कहा जाता है, वो ही प्यारा है। मुझे परमपिता परमात्मा को मनुष्य सच ट्रुथ कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। बाकी भी मनुष्य जो मात्र कथाएं सुनाते हैं उनको शास्त्रों की कथा कहा जाता है, और उनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बाप भी कहते हैं जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सभी झूठी है, और हम जो सुनाता हूं वो सत्य है। उसको कहते हैं सत्यनारायण की कथा, व तीजरी की कथा, या अमरनाथ की कथा। बाकी सभी झूठी कथाएं, और झूठी कथाएं सुनाने वाले ये कथाएं सभी सुनते सुनते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार बन गया। और सभी से बड़े से बड़ा झूठ है ईश्वर को सर्वव्यापी मानना। ये सभी से कड़ी गंदी कथा सुनाना है। पूछा जाता है ईश्वर कहाँ है, तो कह देते पत्थर भीतर सभी में है। बाप समझाते हैं इन जैसा झूठा तो कोई है ही नहीं, ये मनुष्य बड़ा झूठ बोलते हैं और दुनिया में सभी से बड़े झूठ बोलने वाले हैं ये विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर, जो भारत की गवर्नमेंट के भी गुरु बन बैठे हैं। जो कुछ कहते हैं साफ झूठ, 100% झूठ, और 100% झूठ होने से 100% दुखी कौड़ी तुल्य बन गए। बाप आकर सत्य बात बतलाते हैं, कल्प कल्प जिनों को हम सुनाते हैं वो ही आकर के सुनते हैं। इस ड्रामा में पार्ट ही उन्हों का है जिन्होंने कल्प कल्प आकर सत्यनारायण बनने की कथा सुनी है। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे भाव भगवान तो एक ही है, मनुष्य को तो ऊंचे ऊंचे नहीं कहा जा सकता। सूर्य 63 की वाणी का दूसरा पेज। ऊंचे ऊंचे है परमपिता परमात्मा, बाकी सभी मनुष्य मात्र हैं नीचे ते नीचे। अगर कहें ऊंचे ते ऊंचे परमपिता शिव तो चलेगा
नहीं।
क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है, उसके ऊंच और नीच होने की बात नहीं है। जब वो परम पाटधारी हीरो पाटधारी में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे। उनकी भेंट में सभी मनुष्य मात्र नीचे ते नीचे, पत्थर बुद्धि पतित। अभी तुम तो बाप के सामने बैठे हो तो तुमको नशा चढ़ता है, परंतु बाहर जाते हो तो वो नशा उड़ जाता है। अभी तुमको कितना नशा है। परमपिता परमात्मा शिव उनके चित्र हैं। चित्र निराकार का बनाया जाता है, बिंदी का बनता है या साकार का बनता है, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई नहीं जानता है। चित्र तो बनाए दिए, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ कौन था। उनका नाम सोमनाथ क्यों रखा गया, किसको ना था? सोम को ना था, सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? ना था तो बैल को जाता है कि मनुष्य को ना था जाता है? तो क्या बैल को ना था? सोमनाथ नाम क्यों रखा है? इतना भारी मंदिर बनाया। ये बुद्ध जरूर कुछ कर्तव्य करके गए हैं तब तो उनका यादगार बना है। उन्होंने बहुतों को सुख दिया है तो उनका इतना भारी मंदिर बना है। यहां ये बड़े बड़े मकान, आगरे का ताजमहल, ये तो राजाओं ने अपने पैसे से बैठ बनाया। ये तो परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे है। मनुष्य सृष्टि में फिर लक्ष्मी नारायण पवित्र से पवित्र नंबर वन है, उनों की भी महिमा है, क्योंकि वो भारत में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्वेकारी होकर के गए हैं। इतनी महिमा दुनिया में और कोई की नहीं हो सकती। मनुष्य तो बिल्कुल ही बेसमझ हैं, सिर्फ कहेंगे भारत के प्राचीन गॉड गॉडेस हैं। तो तुम तो सभी की जीवन कहानी बता सकते हो। अब ऐसे तो नहीं है कि सबकी बातें ऐसे ही बैठ सुनावेंगे, नहीं, देखा जाता है ऊंचे से ऊंचे कौन है, उसने क्या कर्तव्य किया, वो तो तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, जरूर अगले जन्म में बहुत दान पुण्य हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी किया है। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, जरूर उन्होंने बड़ा दान पुण्य किया होगा। कोई गरीब ने अपना सब कुछ दिया होगा तो उनको दूसरे जन्म में राजा ही मिल जाती है, परंतु जितना सुख स्वर्ग में मिलता है इतना तो नहीं मिल सकता। तुम सब धर्म वालों के लिए समझा सकते हो कि वे तो आकर के सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है, बस। मनुष्य कहते हैं हम तो आवे ही नहीं, परंतु इस दुनिया में आना तो सबको है। उसमें भी ये बेहद का बाप तो आकर सारी दुनिया को सुख देते हैं, इसलिए ही मनुष्य उनको पुकारते हैं, हे परम प्रिय परमात्मा रहम करो, परंतु को जानते कोई नहीं है। ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान कब आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते हैं। अभी भगवान को आना तो जरूर है, तब तो उनको याद करते रहते हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं, ये भक्ति मार्ग भारत में ही चलता है, भक्ति में कभी भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता, बल सुखी तो बहुत होते हैं, तो भी कारण या कारण कोई रोग हो जाएगा, रंक बन जावेंगे, फिर सन्यासियों के लिए तो है ही कौन, जो मरेंगे तो उनको दुख आदि होगा, वो तो जंगलों में जाकर के योग में रहते हैं, बल उनका आयाथार्थ योग है, तो भी उस आयाथार्थ योग का उनको फल तो जरूर मिलता होगा। और ये सन्यासी भी कितने हैं, शास्त्रों की कथा आदि सुनाते रहते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं, सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर का होता है ये तो कोई नहीं जानते, बल गायन करते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब होता है कैसे होता है कौन इन्हों से कराते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। इसको कहते हैं बुद्धि का घोर अंधियारा। बाबा मम्मा बच्चे सब के सब घोर अंधियारे में थे। तो ये रात दिन का अंतर है, जरूर जो बुजुर्ग अनुभवी होगा वो ही बता सकेगा। छोटे बच्चे तो अनुभवी नहीं हो सकते, कृष्ण को अनुभवी नहीं कहेंगे, वो क्या जाने। तो बाप समझाते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूं, मैं सारी दुनिया को जानता हूं, कैसे कैसे सब आते हैं और कौन कौन कब आते हैं, आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का पूरा समाचार देता हूं। और सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का पूरा समाचार आदि में ही देंगे, मध्य में देंगे या अंत में देंगे, अंत तक का पूरा समाचार तो जरूर अंत में ही आकर के देंगे। बीच में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे हो कहेंगे, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही आकर कहते हैं मीठे बच्चे। फिर ब्रह्मा बाबा जी सामान्य बच्चों को कहते हैं, क्यों ब्रह्मा को अपने बच्चे नहीं थे क्या? हाँ थे तो, परंतु उन सब को छोड़ अब रूहानी बच्चों का बाप बना है। रूहानी बाप आकर रूहों को समझाते हैं, बलिए जी समानी बाप ब्रह्मा समझाते हैं तो भी आत्माओं से बात करते हैं। धारणा आत्मा को होती है, इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। तुम जानते हो हमारी आत्मा को परमात्मा से ज्ञान मिला, वो आत्मा सुनाती है, आत्मा इन कानों से आर्गन से सुनती है, आत्मा बुद्धि योग लगाए के सुनती है, परंतु बहुतों की बुद्धि भटकती रहती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि योग और की तरफ चला जाता है, तो देह अभिमान आने से बुद्धि भटकती है। अगर देह अभिमानी होकर के रहे तो बुद्धि कहां अभी जावेगी नहीं। क्या कारण है कि देही अभिमानी होने से बुद्धि इधर उधर नहीं जावेगी? हैं? अरे देही आत्मा को कहा जाता है आत्मा, स्टार है, स्टार तो सीमित जगह में है ना। अपन को स्टार समझेंगे, देही अभिमानी रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर कैसे जावेगी? देह समझेंगे तो देह के संबंधी भी याद आवेंगे, देह के पदार्थ भी याद आवेंगे, ये सारी देह की दुनिया याद आवेगी। तो देहभान आने से ही बुद्धि भटकती है। निराकारी धाम में तो देह है ही नहीं, अभी वहां सबको जाना ही है। जब देह अभिमानी बनते हैं तो ये दुनिया मित्र संबंधी आदि सब याद आते रहते हैं। देह अभिमानी होने से सिर्फ आत्मा की ही याद आती है। अच्छा, ओम शांति।